अपने कैरियर के लिए जूझ रहे मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 19 जनवरी 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का बड़े प्रेम के साथ हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च के बीच होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं दुर्गेश कुमार वर्मा, आप बलिया उत्तर प्रदेश से हैं, अभिषेक सिंह कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं, धीरेन्द्र कुमार फुलकहा माधेपुरा बिहार से हैं, विवेक हिम्मत राव मानवर मुंबई महाराष्ट्र से हैं और हसीब अहमद आप झांसी उत्तर प्रदेश से हैं। तो दुर्गेश, अभिषेक, धीरेन्द्र, विवेक और हसीब, आप 5 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, अब जो क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, आप सबको मालूम है कि 11 से 25 मार्च के बीच 15 दिन की क्लासेस एकेडमी शुरू करने जा रही है। जो भी स्टूडेंट इसमें दाखिला अभी ले रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। और फ्रेंड्स, सूचना यह है कि आपको ध्यान होगा कुछ दिनों पहले ये घोषणा की गई थी कि जो डिस्काउंटेड सीट्स हैं वो 20 तारीख तक के लिए हैं। इसके बाद सीट्स होंगी लेकिन उस पर जो अभी डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो उस पर उस फीस में छूट दी जा रही है, वह समाप्त हो जाएगी। मित्रों, कल 20 तारीख है। एक छोटी सी सूचना के रूप में केवल मैं आपको उस तारीख की याद दिला रहा हूं। हो सकता है कि वो विस्मृति में चला गया हो, कि यूं कह लीजिए कि डिस्काउंट सीट के लाभ के लिए कल आपके पास आखिरी दिन बचा हुआ है। कल के बाद ये डिस्काउंटेड सीट्स समाप्त हो जाएंगी लेकिन सीट्स बची रहेंगी, फिर आपको जो पूरी फीस है उसके तहत दाखिला लेना होगा। तो एक बार फिर से एक शुभचिंतक के रूप में मेरी आप सबको सलाह होगी कि आप यदि दाखिला लेना चाहते हैं, क्लासेस में आना चाहते हैं, तो अब बहुत कम वक्त बचा है, आप डिसाइड करें और कल तक अगर आप एडमिशन ले लेंगे तो आपको डिस्काउंट का फायदा मिल जाएगा। और अगर बाद में भी डिसाइड करेंगे तो कोई बात नहीं, एक छोटी सी राशि ही है, आपको वही थोड़ी सी अतिरिक्त रूप से देनी पड़ेगी, अदरवाइज सीट्स तो अवेलेबल रहेंगी ही। मित्रों, एक छोटी सी दूसरी सूचना भी है और वो यह कि कल YouTube पर मेरा एक वीडियो डाला गया है जो उत्तर लिखने के प्रैक्टिस के ऊपर है। ये वीडियो डाला गया है, आप सब यूट्यूब पर जाकर के ये देख सकते हैं कि आपको उत्तर लिखने की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये बात मैं इसलिए आप सबसे शेयर कर रहा हूं क्योंकि आज फ्राइडे है, कल सैटरडे होगा और सैटरडे को हम लोग वीकली एक क्वेश्चन आप सबको प्रोवाइड करते हैं और ये कहते हैं कि सप्ताह भर आप इसकी तैयारी करके और फिर उसका उत्तर लिखें। तो उत्तर लिखने की प्रैक्टिस आप करेंगे कैसे? देखिए, उत्तर सीधे सीधे नहीं लिखे जाते हैं, उनके भी आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि आप ये जाने कि आप लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, नॉट एट ऑल, वो मूल्यांकन का आधार नहीं है। आपको जानना नहीं है कि मैं लिख पा रहा हूं या नहीं लिख पा रहा हूं, आपको जानना यह है कि मैं कैसे अच्छा से अच्छा लिख सकता हूं, यह है प्रैक्टिस। तो उसके लिए उस वीडियो में कुछ बातें बताई गई हैं, आप अगर जरा भी इच्छुक हैं तो आप उसे सुन सकते हैं। मित्रों, अब कुछ साप्ताहिक सूचनाएं जो मैं लगभग हर फ्राइडे को आप सबको देता हूं, वह यह कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा। कल आपको प्रेस क्लिपिंग्स उसी तरह से मिलेंगी जैसे कि मिलती रहती हैं। साथ ही आपको योजना और कुरुक्षेत्र के टोटल 4 आर्टिकल मिलेंगे, 2 योजना के, 2 कुरुक्षेत्र के। इनमें 2 आर्टिकल टोटल इंग्लिश के होंगे और 2 आर्टिकल टोटल हिंदी के होंगे। साथ ही एक वीकली क्वेश्चन होता है जो मेंस के पैटर्न पर आपको दिया जाता है और जो हमारे क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उन्हें स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। मित्रों, ये साप्ताहिक सूचनाएं थी। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, मतलब सूचना दे रहा हूं अभी। आज हम लोग नवाचार पर बात करेंगे, इनोवेशन पर बात करेंगे। ऐसा क्यों, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट खबरों को देख लें। सच पूछे तो मित्रों, कल की न्यूज में कोई बहुत इंपॉर्टेंट खबर उस तरीके से थी नहीं, फिर भी मैं कुछ बातें आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहूंगा। पहला है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल आपने सुना कि उसकी कल बैठक हुई, उन्होंने कुछ पर टैक्सेस कम किए, निर्णय लिए, और बीच बीच में आप इस तरह की खबरें सुनते रहते हैं कि जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और उसमें यह फैसला किया गया। लगभग हर महीने आपको जीएसटी काउंसिल सुनने को मिल जाता है। मैं ये बताना चाहूंगा कि जीएसटी काउंसिल के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानना चाहिए कि ये बेसिकली जीएसटी काउंसिल है क्या, उसके अमेंडमेंट से लेकर के कि कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट था से लेकर के इसकी कार्य प्रणाली तक कि ये जीएसटी काउंसिल किस तरीके से काम करती है। मैं आपको थोड़ी सी बात ये बताना चाहूंगा कि अब हमारा जो जीएसटी काउंसिल है, ये चूंकि आपको मालूम है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, फेडरल स्ट्रक्चर है, संघात्मक है, जिसमें कि राज्य भी है और संघ भी है, केंद्र सरकार भी है, तो जो जीएसटी काउंसिल है ये सच पूछे तो संघात्मक स्वरूप का बड़ा अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। ये टैक्स के बारे में निर्णय लेती है जीएसटी काउंसिल, ये तो आप समझ गए हैं, लेकिन वो निर्णय लेती कैसे है मित्रों? ये जो जीएसटी काउंसिल बनी है, जो परिषद है, इसके जो हेड हैं, जो अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन हैं, वो होते हैं केंद्र के वित्त मंत्री, यानी कि वर्तमान में कहें कि अरुण जेटली जी इसके अध्यक्ष हैं, राइट? दो सदस्य और केंद्र से ही होते हैं, है ना, जो रेवेन्यू और टैक्स से रिलेटेड जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं, और इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य से इन एक एक सदस्य होते हैं, प्रत्येक राज्य से एक एक सदस्य। और बट नेचुरल है कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि राज्य जो है अपना जो सदस्य उसमें जीएसटी काउंसिल में जो अपॉइंट करेगी वो वहां के वित्त मंत्री हो सकते हैं राज्यों के, या वहां के टैक्स मिनिस्टर हो सकते हैं, जो भी वो अपने ढंग से देना चाहे, कोई मिनिस्टर अन्य भी हो सकते हैं, या डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं, जो भी होंगे वो उसमें सदस्य होंगे। यानी कि आप ये कह लीजिए कि जितने भी राज्य हैं और उन सबके मंत्री, जो एक एक मंत्री उसके सदस्य हैं, और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उसके चेयरपर्सन हैं। अब आप देखिए कि होता क्या है, निर्णय कैसे लिए जाते हैं। याद रखिए, यहां थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहां निर्णय लेने के लिए 75% मत चाहिए, 75% या मोर देन 50% का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, जैसे कि लोकसभा वगैरह में होता है 75%। लेकिन 75% है कैसे, उसका विभाजन थोड़ा सा समझ लीजिए, कभी हम लोग बात करेंगे बाद में काउंसिल के संघात्मक स्वरूप पर, कि 100% अगर हम वोट को मान लें, और 100% मानना ही पड़ेगा, परसेंट निकालेंगे तो मान लें क्या, अगर शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अकेले के पास 33% वेटेज है, 33% वेटेज, 1/3 वेटेज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और रिमेनिंग जो 2/3 वेटेज है वह सभी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, मतलब गवर्नमेंट के पास 66% है और केंद्र सरकार के पास 33% है। किसी भी स्वीकृति के लिए 75% चाहिए, इसका मतलब है कि ज्यादातर वही मामले यहां सहमति हो सकती है उन्हीं मामलों पर जिस पर ज्यादातर लोग सहमत होंगे। तो यहां आप देख रहे हैं कि सामान्य तौर पर कि यहां अब केंद्र सरकार प्रोमिनेंट नहीं रह गई, उसकी मतलब यूं कह लीजिए कि उसी की अधिनायकवाद नहीं चलेगी कि केंद्र सरकार ने जो सोच लिया वही वो कर पाएगी, नॉट एट ऑल। जब तक उसे कुछ राज्यों का सपोर्ट नहीं मिलेगा काउंसिल में, वह अपनी बात पारित नहीं करवा सकती। तो मित्रों, ये थोड़ी सी मैं जीएसटी काउंसिल के बारे में आपको बताना चाह रहा था। अब मैं आता हूं सीधे आज के मुख्य विषय पर, क्योंकि दूसरी न्यूज कुछ ऐसी है भी नहीं। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने इनोवेशन के बारे में थोड़ी सी बात की थी, आई क्रिएट को लेकर। आज जो मैं इनोवेशन के बारे में आपसे बात कर रहा हूं वो बेसिकली जनरल स्टडीज से ज्यादातर संबंधित न होकर के इनफैक्ट ऐसे से संबंधित ज्यादा है। जब आप ऐसे लिखेंगे तो आप किस तरीके से लिखेंगे, है ना, उस पैटर्न पर, तो ऐसे लिखने की प्रणाली पर तो मैं अभी फिलहाल नहीं जा सकता। मित्रों, अगर आप इनोवेशन को सही तरीके से किसी भी देश में, किसी भी समाज में लागू करना चाहते हैं तो उनके लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। देखिए, संस्था बना दी गई, फाउंडेशन बना दिया गया, सेंटर बना दिया गया, ये सारी चीजें बनी हुई भी हैं, संस्थाएं हैं। ये हमारी एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मान लीजिए कि आपके दिमाग में एक बहुत जबरदस्त आइडिया है, लेकिन उस आइडिया को अगर फ्लरिश होने के लिए सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वो आइडिया किल हो जाएगा। और सच पूछिए कि अगर मुझे ये लगता है कि मेरा अगर कोई आइडिया होगा भी तो इसको आगे बढ़ाने का तो मौका मिलेगा ही नहीं, तो वो आइडिया ही आना बंद हो जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण है आइडिया का आना, और दूसरा जो स्टेप है महत्वपूर्ण वो है आइडिया के आने के बाद उसको सपोर्ट मिलना, राइट। तो संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार इसके लिए काम भी कर रही, कल हम लोगों ने थोड़ी सी इस पर चर्चा की। लेकिन मित्रों जो इनोवेशन होता है ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है, बहुत ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि एक मानसिक स्थिति है, ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट है, मतलब एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। मनोवैज्ञानिक स्थिति के लिए आप क्या करेंगे, इसमें जो सबसे बड़ा जो रोल होता है वह होता है वातावरण का, एनवायरमेंट का। और जब मैं एनवायरमेंट की बात कर रहा हूं तो यह प्राकृतिक वातावरण नहीं है कि हरे भरे पेड़ हो, खूब फूल हो और सुगंधित वातावरण हो, शांति हो तो इनोवेशन आ जाएगा, नॉट एट ऑल। एक ऐसी मानसिक वातावरण की जरूरत होती है जिसमें जो हमारा अवचेतन मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो सपने देखता है, पता नहीं क्या क्या इमेजिनेशन करता है, कल्पना करता है, वह अपने आप को एकदम दबावों से मुक्त महसूस कर सके, बिल्कुल फ्री महसूस कर सके। ये दबाव किसी भी तरह के हो सकते हैं, ये दबाव धर्म का हो सकता है, दबाव नैतिकता का हो सकता है, दबाव राजनीति का हो सकता है, दबाव समुदायों का हो सकता है। अगर मुझे ये लगता है कि नहीं, अगर मैंने ये बात कही या मेरे अंदर ये विचार आया, यदि मैंने इसे लिख दिया, बता दिया, तो कुछ भी बवाल मच जाएगा, मेरे ऊपर अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो यूरोप में इससे पहले होता था। आप देखें कि यूरोप में जो रेनेशा पीरियड आया, लगभग 14वीं 15वीं शताब्दी के आसपास, तो रेनेशा पीरियड ने वहां के लोगों की एक ऐसी मानसिक रचना की कि उसमें इस तरह के इनोवेशन फ्लरिश होने लगे, और इसके बाद से साइंस वहां तेजी से उभरा। अदरवाइज तो वहां अगर आप धर्म के खिलाफ, बाइबिल में लिखे हुए तत्वों के खिलाफ अगर कोई भी बात कह देते हैं तो फांसी तक की सजा हो जाती थी, आजन्म कारावास दे दिया जाता था, ऐसी स्थितियां थी। लेकिन जब इस वातावरण को खत्म किया गया तब फिर एक नए तरह का मानसिक वातावरण वहां बना। तो सबसे बड़ी बात होती है मित्रों वातावरण। जैसे अभी आप पद्मावत फिल्म को लेकर के देख लीजिए कि पद्मावत फिल्म आई, चलिए उस पर हुआ, अब केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने उसे ओके भी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट तक ने यह कह दिया कि नहीं, इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इसके बाद भी समुदाय विशेष इसके खिलाफ खड़ा है। तो अब आप अपने को थोड़ा सा फिल्मकार की भूमिका में ले जाइए कि अगर आप कोई फिल्म बनाना चाह रहे हैं किसी महान व्यक्ति पर, या बायोग्राफिकल फिल्म या किसी पर भी बनाना चाह रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि अनजाने में ही अब आपके दिमाग में ये भय होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इस सीन से, मेरे इस डायलॉग से, मेरे इस एक्शन से, यानी कि जो उसमें एक्टिंग कर रहे हैं, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंच जाए, किसी की आस्था आहत हो जाए और फिर इसके खिलाफ लोग खड़े हो जाएं, तो अनजाने में ही फिर वो इमेजिनेशन आपकी सिमटती चली जाएगी। ये इस वातावरण की मैं बात कर रहा हूं, फिर नई चीज आप क्रिएट नहीं कर सकते। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है मित्रों वो है शिक्षा, कि जो हमें शिक्षा दी जा रही है, जो हमें एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या वह एजुकेशन हमारे इमेजिनेशन को बढ़ाने वाली है या हमारे इमेजिनेशन को खत्म करने वाली है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो इमेजिनेशन को बढ़ाने वाली बिल्कुल नहीं है। जो परीक्षा पद्धति है आप देखिए कि रट लीजिए, लिख करके आ जाइए, आप टॉप कर जाएंगे, तो वहां हम अपने इमेजिनेशन या अपने थॉट्स की गुंजाइश नहीं के बराबर है। सिविल सर्विस में थोड़ी सी गुंजाइश होती है इस एग्जामिनेशन में, और यही इसका सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मित्रों इस तरीके से कुछ मैंने आपको तथ्य प्रोवाइड किए हैं। देखिए, एक है संस्थाएं तो जरूरी है, दूसरा है मनोवैज्ञानिक वातावरण, और तीसरा है शिक्षा पद्धति। जब इन तीनों का सामंजस्य होता है तब फिर धीरे धीरे इनोवेशन आगे बढ़ता है। और आप लोगों को मैं एक आंकड़ा बताना चाहूंगा कि स्विट्जरलैंड तो अभी टॉप पर है, एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें स्विट्जरलैंड टॉप पर है। लगभग 130 देशों का निकाला गया है जिसमें भारत का स्थान अभी 60वां है, मतलब बीच में है। और सच पूछिए तो भारत का जो इतना गौरवशाली इतिहास का अतीत रहा है, सच पूछ विज्ञान का अतीत रहा है, इतनी बड़ी हमारे पास आबादी है, इतनी प्राचीनतम हमारी संस्कृति है, इतनी उदार संस्कृति रही है, उसको देखते हुए अगर हम 60वें स्थान पर हैं तो ये हमारे लिए कोई बहुत गर्व की बात नहीं है। तो मित्रों, आज के इस मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। जहां तक अखबारों की क्लिपिंग्स का सवाल है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं। अब आता हूं ईमेल के चरण पर। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: लवकुश पुजवानी, विशाल धाकड़ रतलाम मध्य प्रदेश से, प्रसून कुमार पुष्पकर, संजय गौतम, भंजनलाल बिश्नोई बाड़मेर राजस्थान से, शशिकांत पांडे और रितेश नायक। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज मैं आपसे सीधे 2 दिनों की इजाजत मांगने की गुस्ताखी कर रहा हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार करें, शुभकामनाएं स्वीकार करें। नमस्कार।